الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجن کی ابتدا سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے. سورۃ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جنات کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجن ہے. ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے حبیب، تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت غور سے سنی تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ آپ لوگوں کو ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے. اس بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے، اسی طرح جنات کی طرف بھی اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جنات نے سنا تو وہ ایمان لے آئے. تو جب جنات سن کر ایمان لے آئیں تو اے انسانوں، تمہیں تو اس کی طرف زیادہ جلدی کرنی چاہیے کہ تم انسان ہو اور تمہارے سامنے تمہاری ہی جن سے رسول تشریف لائے ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پڑھنا جو جنات نے سنا تھا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ نصیبین کے کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف کے درمیان نخلا نامی جگہ پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو وہاں پر نصیبین نامی علاقے کے جنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی، متاثر ہوئے اور اپنی قوم کو جا کے بھی اسلام کی دعوت دی. اپنی قوم سے بھی جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ان جنات کا ایمان قبول کرنے کا بیان تھا. روایت میں یہ ہے کہ یہ 9 جنات تھے. یہاں پر چونکہ بطور خاص جنات کا تذکرہ ہوا اور یہ سورت بھی سورت جن ہے، اس مناسبت سے جنات کے بارے میں جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے میں وہ عرض کر دوں. جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور یہ قرآن پاک میں شیطان نے جو جن تھا اس نے یہی کہا تھا نا کہ اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتانی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تو جنات آگ سے پیدا کیے گئے. اچھا، اس کے علاوہ وخلق الجان من مارج من نار، یہ بھی قرآن پاک کے اندر. تو جنات کا آگ سے پیدا کیا جانا یہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. جنات کو بڑی طاقت دی گئی ہے، جو شکل چاہیں بنا لے، یہ اپنی مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں. ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں. ان میں جو شریر ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. یہ انسان کی طرح عقل بھی رکھتے ہیں، روح بھی رکھتے ہیں، جسم بھی رکھتے ہیں. ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے. इनकी औलाद भी होती है, खाते पीते भी हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं। तो ये जिन्नात के बारे में। अच्छा, जिन्नात के अंदर मुसलमान भी हैं, काफिर भी, लेकिन इनमें कुफार की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा। फिर जिन्नात के अंदर शर और शरारत का मादा ज़्यादा है, यानी जिन्नात के अंदर शरीफ कम होंगे, शरीर ज़्यादा होंगे, शरारत करने वाले ज़्यादा होंगे। जिन्नात का बाकायदा वजूद है, जैसे हम इंसान हैं तो हम कोई जो है वो नज़र, हम जो है वो कोई गैबी मखलूक नहीं है, हमारा बाकायदा वजूद है, हमारा जिस्म है। जिन्नात नज़र नहीं आते हैं, गैबी मखलूक, लेकिन इनका बाकायदा वजूद है। ये नहीं कहेंगे कि बदी की कुव्वत का नाम शैतान है, जैसे बाद जाहिलों ने ये कहा कि जिन्नात जो है इनका कोई खारजी वजूद नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर जो बुराई की ताकत है उसका नाम जिन है, उसका नाम शैतान है। ये अकीदा बिल्कुल बातिल है, गलत है, कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ है। नई रोशनी की हवा जिनको लगती है, या दहरियत और इल्हाद की हवा के से जो मुतासिर होते हैं, वो आमतौर पर इस तरह की बातें करते हैं कि जी हम तो जिन्नात पे बिलीव ही नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते आप? हमने देखा नहीं। वो तुमने तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी, तो जो तुम नहीं देखोगे उसका इनकार कर दोगे क्या? नज़र तो हवा भी नहीं आती, तो क्या हवा को नहीं मानोगे? नज़र रूह भी नहीं आती, तो क्या रूह को नहीं मानोगे? तो नज़र ना आना, ये तो ना होने की दलील ही नहीं। लिहाजा ये जो आजकल बहुत सारे लोगों से मुतासिर होकर लोग जिन्नात का इनकार कर देते, ये बिल्कुल बातिल है। जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है, और कुरान पाक में एक नहीं 30 से ज़्यादा मकामात पर जिन्नात का तस्किर है। ये तो पूरी सूरह जिन है, और इसमें जगह जगह जिन्नात का तस्किर है। इसी तरह सूरह रहमान के अंदर जिन्नात का तस्किर है, इसके अलावा भी सूरतों के अंदर मौजूद है। लिहाजा जिन्नात के वजूद का इनकार ना करें कि जिन्नात का वजूद नहीं है। जिन्नात का वजूद है, और वही है जो कुरान पाक ने बयान फरमाया कि ये आग से पैदा किए गए। खलकल जान मिन नारी जिन मिन नार, अल्लाह ने जिन्नों को पैदा किया और ये आग से पैदा किए गए। अच्छा, यही इसी मुनासिबत से एक और चीज़ बेरस करूँ, जैसे जिन्नात नज़र नहीं आते, इसी तरह फरिश्ते भी नज़र नहीं आते। तो फरिश्ते भी एक नज़र ना आने वाली मखलूक है, कि उमूमी तौर पर नज़र नहीं आते। और फरिश्ते क्या हैं, उनके बारे में हमारा अकीदा क्या है, वो भी मैं अर्ज़ करूँ। फरिश्ते नूरी अजसाम हैं, ये नूर से पैदा किए गए। अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता फरमाई है कि ये भी जो शक्ल चाहें बना लें। कभी इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, कभी किसी दूसरी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह इन्हें हुक्म फरमाता है। ये जानबूझकर या भूलकर या गलती से किसी भी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये वही करते। यफ़अलूना मा युमरून, ये वो करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। और फरिश्ते अल्लाह ताला के मासूम बंदे हैं, ये अल्लाह ताला के मासूम बंदे हैं, सगीरा कबीरा गुनाहों से पाक हैं। फरिश्तों के वजूद का इनकार करना भी कुफर है। जैसे जिन्नात का बाद लोग इनकार करते ना कि जिन्नात बदी की ताकत का नाम है, तो फरिश्तों के बारे में भी कहते हैं ये नेकी की ताकत कुव्वत का नाम है। नेकी की कुव्वत का नाम फरिश्ता नहीं है। फरिश्ता अल्लाह ताला की बाकायदा एक मखलूक है, नूर से बनी हुई। इनका वजूद है, ये ज़मीन पर भी हैं, आसमानों पर भी हैं, और ना जाने कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ जहाँ इन्हें खुदा ने रखा हुआ। इनमें चार फरिश्ते सबसे मशहूर हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें हजरत इसराइल भी कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फरिश्तों का बयान कुरान पाक के अंदर मस्कूर है। फरिश्तों के वजूद का इनकार करना और ये कहना कि फरिश्ते सिर्फ नेकी की कुव्वत का नाम है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये कहना कुफर है। ऐसा कहना इस्लाम का अकीदा नहीं है। अब जिन्नात ने जो बातें कहीं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को वही की गई कि आप ये फरमाएं कि मुझे ये वही की गई कि जिन्नात ने ये कहा, जिन्नात ईमान लाए और उन्होंने ये कहा, तो अब उसी का आगे बयान होता है। इरशाद फरमाया वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखदा सोहिबतं वला वलदा वअन्नहु काना यकूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, उसने कोई बीवी और बच्चा ना बनाया, यानी उसने इख्तियार नहीं किया। और ये कि हम में से कोई बेवकूफ ही अल्लाह पर हद से बढ़कर बात कहता था। और ये कि हमने ख्याल किया था कि आदमी और जिन हरगिज अल्लाह पर झूठ ना बांधेंगे। ये जिन्नात की बातें जो मज़ीद बयान की गई कि जिन्नात ने कहा कि हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है, उसने ना कोई बीवी इख्तियार की और ना कोई बच्चा अडॉप्ट किया कि किसी को अपना बच्चा उसने बना दिया हो, ऐसा नहीं। और ये कि हम में से कोई बेवकूफ़ ही अल्लाह ताला पर हद से बढ़कर की बात करेगा जो उसकी शान के लायक नहीं। और जिन्नात ने ये भी कहा कि हमारा तो ख्याल ये था कि आदमी और जिन हरगिज अल्लाह पर झूठ नहीं बांधेंगे, लेकिन कुरान सुन के हमें पता चला कि इंसानों और जिन्नों ने खुदा पे झूठ बांधा। इंसानों ने खुदा की तरफ औलाद भी मंसूब की, बीवी भी मंसूब की और शिर्क भी मंसूब किया, और उन्हीं को सुनकर मानकर जिन्नात भी उनके पीछे लगे। तो जिन्नों और इंसानों ने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा। हमारा तो गुमान ही नहीं था कि इंसान और जिन्न खुदा पे झूठ बांध सकते हैं, तो हम तो इनकी पैरवी के अंदर काफिर हुए पड़े थे। लेकिन जब कुरान के जरिए हमें हक पता चल गया कि अल्लाह ताला औलाद से पाक है, अल्लाह ताला बीवी से पाक है, अल्लाह ताला अय्यूब से पाक है, अल्लाह ताला शरीक से पाक है, तो अब हम वही अकीदा रखते हैं जो कुरान ने बयान किया। मसीह जिन्नात ने कहा वह अन्नहू काना रिजालुम मिनल इंस यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फसादूहुम रहका। और ये कि आदमियों में से कुछ मर्द जिन्नों के कुछ मर्दों की पनाह लेते थे, तो उन्होंने उन जिन्नों की सरकशी को मजीद बढ़ा दिया। ये बड़ा दिलचस्प एक अमर है जो जिन्नात ने बयान किया कि इंसानों में से कुछ मर्द ऐसे थे जो जिन्नात की पनाह लेते थे, जिन्नात के मर्दों की पनाह लेते थे, और उसका नतीजा ये होता था कि जिन्नात की सरकशी में और इजाफा होता था। अब ये बड़ी वादे सी बात है। पहले ये कि ये होता कैसे था, अहले अरब के अंदर ये रिवाज था कि जब वो सफर करते और किसी वादी में किसी बयाबान के अंदर क्याम करते, खैमे लगाते, पड़ाव डालते वहां पर, तो वो कहते कि हम इस वादी के जिन्नों के सरदार की पनाह लेते हैं। अब जब इंसान ये कह रहा है कि इस वादी के जिन्नात के सरदार की हम पनाह लेते हैं, तो सरदार साहब तो चौड़े हो गए ना। सरदार साहब ने कहा मेरी तो पनाह लेते हैं ये, तो उनकी सरगशी में इजाफा होता है। इंसानों के अंदर भी यही होता है। इंसानों में भी एक आदमी अगर आपके बड़ा दूसरों के ऊपर रोब डाल ले और बाकी सारे उसकी वाह वाह करने लगे, तो उसके दिमाग का सरिया और जाना सीधा हो जाता है, उसकी गर्दन के अंदर सरिया आ जाता है। और अगर उसके दो जूते लगा दिए जाए तो उसका दिमाग ठीक हो जाता है। बदमाश बनने के अंदर और गुंडा बनने के अंदर बहुत बड़ा उंसुर ये होता है कि जो शख्स गुंडागर्दी करता है लोग उसे डरना शुरू हो जाते हैं। जब उससे डरते हैं तो वो और ज्यादा चौड़ा होना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का डर बढ़ता जाता है और उस जो है वो उस गुंडे की जो गुंडागर्दी है वो बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी ताकत, घुमंड, गुरूर और सरकशी के अंदर बढ़ जाता है। और अगर पहले दिन ही 100 बंदों पे एक गुंडे ने आके रोब जमाया, ये 100 बंदे मिलकर उसका दिमाग ठीक कर दें, उसके बाद दोबारा नाम नहीं लेगा उस मोहल्ले के अंदर आने की। तो जैसे इंसानों के अंदर ये होता है कि अगर बहुत सारे इंसान मिलके किसी के सामने जनाब जी हुजूर करते फिरें और वो बिल्कुल फिरौन बन जाता है, इसी तरह जिन्नात के साथ मामला हुआ कि जब इंसानों ने जिन्नात को अपना बड़ा मानकर उनसे पनाह मांगना शुरू कर दी, उनकी पनाह मांगना शुरू कर दी, तो नतीजा ये हुआ कि जिन्नात के तकब्बुर, सरकशी और बड़ाई के अंदर और इजाफा हो गया। तो ये यहां पर जिन्नात ने कहा कि आदमियों में से कुछ मर्द जिन्नों के कुछ मर्दों की पनाह लेते हैं, तो इन इंसानों ने जिन्नों की सरकशी को मजीद बढ़ा दिया। अगर ये ना करते तो मामला वहां तक ना पहुंचता। अब मजीद इरशाद होता है वह अन्नहुम वन्नू कमा वनन्तुम अल्लन यबअसल्लाहु अहदा। और ये कि उन्होंने वैसे ही गुमान किया जैसा ए जिन्नो तुमने गुमान किया कि अल्लाह हरगिज कोई रसूल ना भेजेगा या ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب آسان سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جنات نے، جن دوسرے جنوں سے مخاطب تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ اپنی قوم سے جا کے بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے جنوں، تم نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تم نے گمان کیا، ویسا ہی انسانوں نے گمان کیا۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی رسول کو دوبارہ نہیں بھیجے گا، ایسا ہی انسانوں نے گمان کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یا کہا کہ اے جنوں، جیسے تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھاتا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا، لیکن یہ دونوں باتیں ہی غلط تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ آگے مزید ارشاد ہوا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا غَصَدًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ یہ جنات کی آپس میں بات ہوئی۔ جنات نے کہا کہ پہلے ہم آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو آسمان کے کنارے پر بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتے جو باتیں کرتے تھے اس میں سے چند ایک ہم بھی سنتے تھے، زمین پہ آ کے اپنے دوستوں کو، کاہنوں کو بتاتے تھے، ان کی آگے کاروبار چل جاتا تھا کہ لوگوں کو دو باتیں بتائیں، دس اپنی طرف سے ملائیں تو کاروبار چل پڑا ان کا، اور موجے کرتے تھے۔ لیکن جنات نے کہا کہ اب ایسا ہوا کہ اب جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں شعلے ہی شعلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں چنگاریاں ہیں، آگ ہے، کہ ہم قریب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ماری جاتی ہے، برسائی جاتی ہے، اور ہمیں بھاگ کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو آسمان کے قریب جانا جنات کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب جو قریب جائے گا اس کے اوپر شعلے پڑیں گے، آگ پڑے گی، جلا کے رکھ کر دیا جائے گا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے تو شیطان اوپر جاتے تھے، جنات اوپر جاتے تھے، اور اب داخلہ بند ہو گیا اور اوپر سے شعلے پڑنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے ابلیس، جو شیطانوں کا سردار ہے، بڑا شیطان، اس سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنا لشکر بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو دنیا میں کوئی نیا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان یا مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو لشکر نے آ کے ابلیس کو آ کے یہ بات بتائی کہ ہم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما رہا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے رکاوٹ قائم کر دی گئی۔ اب مزید جنات کی اور باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو آسمانوں پہ جانا جنات کا بند ہو گیا، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، جنت کے مستحق بنیں، या लोगों के साथ, जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया गया है कि ना ईमान ला के जहन्नम के मुस्तहिक बने। खैर के इरादे को डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया है, अम अरादा बिहिम, या उनके रब ने उनके साथ इरादा फरमाया खैर का। और बुराई के इरादे को क्या कहा गया, या शर का इरादा किया गया है उनके साथ। ये एक हुस्ने अदब की तालीम है कि बुराई की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की जाती, भलाई की निस्बत की जाती है, अगरचे अल्लाह ताला हर शय का खालिक है। अब जिन्नात ने मजीद कहा, व अन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना फराइक क़िददा وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ یہ ان جنات کا ایمان تھا جو انہوں نے کہا कि हम में कुछ तो नेक हैं, जिन्नात में कुछ नेक हैं और कुछ इसके अलावा है, कुछ मुसलमान हैं कुछ काफिर हैं, तो हम मुख्तलिफ राहों में बटे हुए हैं। अब ये जो मोमिन जिन्नात हैं, इन्होंने कहा कि हमें यकीन हो गया है कि हम अल्लाह ताला को न ज़मीन में बेबस कर सकते हैं, न ज़मीन से भाग कर बेबस कर सकते हैं, हम जहाँ भी होंगे खुदा की कुदरत में होंगे, खुदा के कब्ज़े में होंगे। अब उन्होंने मज़ीद कहा, वह अन्ना लम्मा समिअना अल-हुदा आमन्ना बिह فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ یہ ان جنات نے اپنے ایمان کا بیان کر دیا کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے کسی کمی کا خوف نہیں ہے کہ خدا اس کے اجر میں کمی کر دے گا، اور نہ اسے کسی زیادتی کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جرمی اس کو سزا دے دے گا، اسے اس کا کوئی خوف نہیں۔ مزید کہا، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ یہ ان جنات نے مزید کہا کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ ظالم، ظالم سے مراد یہاں پر مشرک کافر، تو جو اسلام لے آئے انہوں نے تو ہدایت کا ارادہ کیا، ہدایت کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی جنات میں بھی جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات تو پہلے ہی آگ سے بنے، اب جنات آگ سے بنے، جہنم میں بھی آگ ہے تو آگ آگ کو کیسے سزا دے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آگ آگ کو کیسے سزا دے گی۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کی اس حیات کو بدل دے گا اور آگ کے ذریعے ان کو سزا دے گا، اور یا یہ ہے کہ جنات کی جو آگ ہے اس کی نوعیت اور ہے اور جو جہنم کی آگ ہے اس کی نوعیت اور ہے، اسی جہنم کی آگ کی شدت جو ہے وہ جنات کو بھی سزا دے گی جو آگ کے بنے ہوئے۔ ہم گوشت کے بنے ہوئے نا، ہم گوشت ہے، ہڈی ہے، تو کیا ہمیں گوشت اگر مارا جائے تو ہمیں چوٹ نہیں لگے گی؟ لگے گی۔ تو ہم گوشت کے بنے ہوئے اور گوشت ہی ہمیں مارا جائے تو ہمیں چوٹ لگے گی، تو اسی طریقے سے جنات آگ سے بنے ہوئے تو آگ ہی کے ذریعے ان کو بھی سزا دے دی جائے گی، اس میں تو کیسی استحالے کی بات نہیں ہے۔ اب آگے ارشاد ہوا، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور یہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی امت سے فرما دیں، مجھے یہ وحی کی گئی کہ انسان اگر اسلام پر سیدھے طریقے سے عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، ان کو بہت پانی عطا فرمائے گا، ان کے لیے وسعت عیش عطا فرمائے گا، زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، ये गलत और झूठ नहीं हो सकता। बात ये है कि हम अमल ही नहीं करते, या हम अमल करते हैं तो 1.5 अरब मुसलमान हैं और 1 लाख बंदा अमल करके बोलता है कि जनाब हमें तो हो ही नहीं रहा। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें अक्सर व बेशतर अल्लाह ताला फ़र्द के एतबार से नहीं फरमाता, ऐसा होल फरमाता है, यानी बहसियत मजमुई कौमों के एतबार से फरमाता है कि मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कौम अगर ये इस्लाम पर पूरे तरीके से अमल पैरा हो जाए तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे इनके लिए खोल देगा, अल्लाह ताला रहमतों के दरिया इनके ऊपर बहा देगा। लेकिन अमल तो करके देखिए, अमल करते नहीं, ये चंद अफराद अमल करते हैं और बोलते हैं जनाब हमारा तो, हमारे लिए तो रिज़्क़ के दरवाजे खुले नहीं, अगरचे अल्लाह ताला उन पर भी करम फरमा देता है, लेकिन जरा सारे तो मिलकर करें ना, फिर देखिए अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है। अच्छा, ये इस आयत की एक तफसीर थी। एक दूसरी तफसीर भी है, वो ये है कि फरमाया गया कि ए नबी आप लोगों से फरमा दें कि अगर लोग अपने साबिका तरीके पे डटे रहे, वह अल्लाह विस्तकामु अला तरीका थी, अगर वो अपनी साबिका रविश कुफ्र पे डटे रहे तो अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ अता फरमाएगा। सवाल पैदा होता है, जब कुफर करके भी अल्लाह ताला बहुत कुछ अता फरमाएगा, ये क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला गाफिलों को भी बहुत अता फरमाता है, लेकिन उनको उनको क्यों अता फरमाता है? मोहलत के तौर पे, कि चलो तुम्हारी मोहलत की रस्सी और हमने ढीली कर दी और तुम्हें मोहलत अता कर दी, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला खींचता है और जब बदला और सज़ा देता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब इस देने की हिकमत अल्लाह ताला ने आगे खुद इरशाद फरमाई, फरमाया लिनफ्तिनहुम फीह वमन युरिद अन ज़िक्री रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सुआदा, ताकि इस बारे में हम उन्हें आजमाएं और जो अपने रब की याद से मुंह फेरे तो वो उसे चढ़ जाने वाले अजाब में डाल देगा। रिस्क वसी क्यों? ताकि हम बंदों को आजमाएं उस रिस्क के बारे में। अल्लाह ताला कुछ लोगों को बहुत दे देता है, क्यों? ताकि उसको आजमाया जाए कि ये सारा जमा करके अपने घर में ही रख लेता है या दूसरों का भी ख्याल करता है, ये इस माल को गफलत मासियत और गुनाह में इस्तेमाल करता है या खुदा की बंदगी और इताअत में इस्तेमाल करता है। तो ये अल्लाह ताला जो माल अता फरमाता है इसमें भी इम्तिहान होता है, लेकिन अफसोस ये है कि अक्सर लोग जब उनको माल मिले तो इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। माल मिला तो पहले नंबर पर गुनाह के मनसूबे शुरू कि हाँ भाई क्या क्या करना है, अब फिर जो शबाब शराब कबाब, फिर जो उल्टी चीज़ें समझ आती हैं, आदमी उसके अंदर पड़ जाता है। अक्सर यही देखा है कि माल जब आता है तो इंसान पे गफलत ज़्यादा आती है, हालांकि ये माल बंदे की आजमाइश के लिए था। ये माल तो दे दिया, अब देखते शुक्र करता या नहीं करता, अब देखते हैं कि खुदा की बंदगी में इस्तेमाल करता है या नाफरमानी में इस्तेमाल करता है। फरमाया कि जो अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेरेगा, कुरान से, तौहीद से, ईमान से मुँह फेरेगा, तो अल्लाह ताला उसे उस अजाब में डालेगा जो दम बदम बढ़ता जाएगा, जिसके अंदर इजाफा ही होता जाएगा, कमी नहीं होगी। आगे इरशाद होता है वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउू मअल्लाहि अहदा, और ये कि मस्जिदें अल्लाह ही की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की इबादत ना करो। मस्जिदें अल्लाह की, मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई। क्या मतलब? मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मस्जिद हराम में खाना काबा के अंदर भी बुत थे, खाना काबा के बाहर भी बुत थे, सफा पर भी बुत, मरवा पर भी बुत, 360 बुत मुशरिकों ने मस्जिद हराम के अंदर रखे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदों के अंदर अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करो। अल्लाह के साथ किसी और की इबादत तो कहीं भी नहीं कर सकते, अपने घर में भी नहीं कर सकते, ये नहीं है मस्जिद में नहीं करनी तो अपने घर में कर सकते, ऐसा नहीं। शिर्क तो हर जगह शिर्क है, घर में करे, बाजार में करे या मस्जिद में करे, लेकिन मस्जिदें तो बतौर खास अल्लाह की तरफ मंसूब हैं, उनकी नस्बत शरफ नस्बत शराफत अल्लाह ताला की तरफ, तो मस्जिदें तो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती हैं, उसमें बुत रखना तो और बुरा, घर में बुत रखना भी बुरा, लेकिन मस्जिद में रख के उसकी इबादत करना तो उससे ज़्यादा बुरा। तो यहाँ पर अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाने और माबूद बनाकर उसकी इबादत करने, उसे पुकारने की ममानत है। बास लोग इस तरह की आयतें उठा के अल्लाह के नबियों पे लगा देते कि जी मस्जिद अल्लाह के लिए और मस्जिद के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो, लिहाजा जो या रसूलुल्लाह कहते हो जो इस तरह की बातें करते हो वो दुरुस्त नहीं है, इस आयत के खिलाफ है। हालांकि इतनी बड़ी जहालत है, क्यों? इसलिए कि मस्जिद के अंदर हालत नमाज में अत्ताहियात के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये नमाज में पढ़ना वाजिब है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना इस तरह मना होता कि नबी को भी नहीं पुकार सकते, तो फिर ऐन नमाज के अंदर अत्ताहियात में कहां से पुकार आ गई? नमाज के अंदर पुकार मौजूद, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, तो नबी पाक अलैहि सलाम को पुकार। तो पता चला कि इस पुकार से मुराद है किसी को खुदा समझ के पुकारना। खुदा समझ के पुकारना मना है, खा वो नबी को पुकारा जाए या वो वली को पुकारा जाए या वो किसी को पुकारा जाए। हाँ, खुदा समझ के नहीं है, अल्लाह ताला की अता से किसी और एतबार से अगर पुकारा जा रहा है तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। आगे इरशाद होता है وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी इबादत करने खड़ा हुआ तो करीब था कि वो जिन उस पर हुजूम कर देते। फरमाया कि ए नबी अलैहिस्सलाम आप लोगों को बताइए कि मेरी तरफ ये वही की गई कि जब मैं अल्लाह की इबादत के लिए नमाज फजर में कुरान पढ़ रहा था, नमाज फजर पढ़ रहा था और उसमें कुरान पढ़ रहा था, तो जिन्नात इतनी कसरत के साथ जमा हुए कि जैसे हुजूम हो गया और वो हुजूम करके मेरा कुरान सुन रहे थे और उन्होंने कुरान को सुनकर बड़ा पसंद किया कि सुभान अल्लाह, खुदा का कैसा खूबसूरत कलाम है, कितना जो है वो ताज्जुब में डाल देने वाला कलाम है। अब आगे इरशाद होता है قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا, तुम फरमाओ मैं तो अपने रब ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराता। قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, तुम फरमाओ बेशक मैं तुम्हारे लिए किसी नुकसान और नफा का मालिक नहीं हूं। तुम फरमाओ यकीनन हरगिज मुझे अल्लाह से कोई ना बचाएगा और हरगिज उसके सिवा कोई पनाह ना पाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप बड़े वाज़े अल्फाज में बता दें कि मैं जाती तौर पे तुम्हारे लिए किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाह की अता के बगैर नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी के नफे नुकसान के मालिक नहीं, वरना आप पर जो ईमान लाएगा तो सरकार के सदके ही उसको ईमान की दौलत नसीब होगी ना। नबी पाक अलैहि सलाम शफात फरमाएंगे तो ये नफा ही है, हौजे कौसर के जाम अता फरमाएंगे नफा ही है, हौजे कौसर के मालिक हैं तो मालिक तो हैं आप, और उससे लोगों को नफा भी पहुंचाएंगे, शफात करेंगे लोगों को नफा पहुंचाएंगे, शफात कुबरा के जरिए लोगों को नफा पहुंचाएंगे, दुनिया के अंदर बीसियों सैकड़ों मोजजात के जरिए किसी को आंख अता फरमाई, किसी को जो है वो टूटी हुई टांग जोड़ दी, किसी को पानी अता फरमाया, 1400 सहाबाए किराम को पानी पिला दिया, 70 सहाबाए किराम को दूध से सैर कर दिया, हजारों सहाबाए किराम को थोड़े से खाने के अंदर गुजारा करा दिया, सब नफा है। लेकिन ये सब नफे अल्लाह की अता से, अपने जाती तौर पर नहीं, सब अल्लाह की अता से। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप बता दें कि मैं तुम्हारे किसी बुरे भले का मालिक नहीं अपनी जाती हैसियत में। हाँ, खुदा इख्तियार दे दे तो वो और बात है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक चीख मार के पूरी कौम को हलाक कर देते थे तो नुकसान के तो मालिक हुए, लेकिन जाती तौर पे नहीं, अल्लाह की अता से। अब आगे इरशाद होता है इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालाती وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, मगर मेरा काम अल्लाह की तरफ से तबलीग और उसके पैगामात पहुंचाना है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ना माने तो बेशक उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। पहले फरमाया कि ए नबी तुम लोगों से कह दो कि मैं तुम्हारे लिए किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं, यानी मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें दुनियावी नफे बांटता फिरूं, या मैं तुम्हें दुनियावी नुकसान से मुत्तले कर दूं कि भाई ये होने वाला है तो पैसे जमा कर लो, पहले से जखीरा कर लो। मेरा काम ये नहीं है, मैं तो खुदा के पैगाम तुम तक पहुंचाने आया। लिहाजा बहसियत जिम्मेदारी जो मुझे कहा गया है उसके एतबार से मैं तुम्हें खुदा की रहमत की बशारत सुनाऊंगा और खुदा के अजाब से डर सुनाऊंगा। बकिया इसके अलावा कोई चीज़ मेरी जिम्मेदारी के अंदर नहीं। लिहाजा मेरे अहकाम को मानो। मेरा काम खुदा के अहकाम पहुंचाना है, उन अहकाम को मानो। उसमें जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। यानी अगर ईमान नहीं है तो फिर जहन्नम में हमेशा रहेगा। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदून फसयअलमून मन अदअफ़ नासिरन व अक़ल्लु अददा। यहाँ तक कि जब वो उसे देखेंगे जिसकी उन्हें वईद सुनाई जाती थी तो जल्द जान जाएंगे कि किसका मददगार कमज़ोर और किसकी तादाद कम है। कुफार को बड़ा नाज था कि हमारी ताकत बड़ी है, हमारी जो है वो अफराद बड़े, हमारे पास जमहूरियत हमारे साथ है और हमारे जो मददगार है बड़े ताकतवर हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो दिन आएगा ना जिस दिन से इनको डराया जा रहा है, अजाब का दिन या क्यामत का दिन, तो फिर इनको पता चल जाएगा कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसकी तादाद कम है। फिर पता चलेगा कि ताकतवर वो है जिसका मददगार खुदा है और तादाद भी उसी की ज़्यादा है जिसकी तरफ खुदा की हिमायत है। तो लिहाजा ये दुनियावी ताकत और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपने नाजा ना हो। आगे फरमाया कुल इन अदरी अकरीबुम मा तुअदून अम यजअलु लहू रब्बी अमदा। तुम फरमाओ मैं नहीं जानता कि जिसकी तुम्हें वईद सुनाई जाती है वो नज़दीक है या मेरा रब उसके लिए एक वक्फा करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं तुम्हें क्यामत से डराता हूँ, ए लोगो मैं तुम्हें क्यामत से डराता हूँ कि क्यामत आ जाएगी, हिसाब देना पड़ेगा, जहन्नम ठिकाना हो जाएगा। अब आएगी कब? तो फरमाया कि मैं नहीं जानता कि वो करीब है या अल्लाह ताला ने उसके लिए वक्फा रखा है कि कुछ अरसे बाद आएगी। क्योंकि कुफार बार बार ये सवाल करते थे कि अच्छा आप क्यामत क्यामत की बात करते हैं, ये बताएं कब आएगी, किस दिन आएगी, किस साल आएगी, कितने सालों के बाद आएगी, वो बताएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये बताने थोड़ी आया हूं कि क्यामत कब आएगी, ये बताने आया हूं कि आएगी। लिहाजा उसकी तैयारी करो। दिन महीना और साल जो है ये मुतय्यन करके तुम्हें बताने के लिए नहीं आया कि फलां साल के फलां दिन तारीख को आएगी। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिन और महीना जो है वो बता भी दिया कि जुम्मे के दिन आएगी, लेकिन किस साल आएगी ये नहीं बताया। उसके इबहाम की वजह से क्यामत लोगों को मालूम नहीं कि कब आएगी। अब बकिया ये सवाल कि नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम को इसका इल्म था या नहीं कि क्यामत कब आएगी। तो इसके बारे में अर्ज ये है कि उलमाए किराम की एक तादाद ने ये तहरीर फरमाया है कि नबी पाक अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने क्यामत का इल्म अता फरमाया था। यहाँ जो आयत के अंदर है कि तुम कह दो कि मैं नहीं जानता, तो जब तक नहीं बताया था तब तक ये था और जब बता दिया तो उसके बाद पता चल गया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर दिरायत की नफी है। इन अदरी, मुझे दिरायत नहीं है कि क़यामत करीब है या दूर है। दिरायत कहते हैं अपने अकली क्यास से जानना, कि आदमी अपने अकल के जरिए किसी शय को जान ले, इसे दिरायत कहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मैं अपनी अक्ल से नहीं जानता, खुदा के बताने से जानता। तो हमारा अकीदा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को क़यामत का इल्म है खुदा के बताने से, अकली क्यास आराइयों के जरिए क़यामत का इल्म नहीं है। मज़ीद तफ़सील इंशाअल्लाह अगली आयत के तहत अगले सिलसिले के अंदर करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।